श्री चालीलाधीरानंद कुंदे स्वाघो समनी मजंतम आख्यापयंतम
तृतीय श्लोक अनुवाद। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। इस श्लोक में गुण विशेष द्वारा पार्थिव वस्तु का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। इस प्रकार भक्त वश्यता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहरा अपनी अन्य असाधारणी शैश्विल लीलाओं अर्थात कीड़ों के द्वारा स्वघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जो आनंद रस में गभीर जलाशय विशेष में अतिशय सराबोर कर रहे हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। यहाँ स्वलीला भी ही पद में उक्त लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित पद्यों में वर्णित लीला का निर्देश समझना चाहिए। तदथ्या गोपी भी स्तोभितो अनृत्याद भगवान बालवत क्वचित उद्गायती क्वचिन मुग्धस तद वसो दारु यंत्रवत बृहत्ति क्वचिन आज्ञापतः पृथक कनुमान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते स्वनम च प्रीतिम समुद्वम। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों की भांति नाचने लगते, कभी भोले भोले अनजान बालक की तरह गाने लगते। गोपियाँ कहती, यदि तुम नृत्य करोगे तो मैं तुम्हें लड्डू दूंगी। तब श्री कृष्ण नाचने लगते, अथवा जब गोपियाँ हाथ से ताली बजाकर उत्साहित करती तब वे अखिल ऐश्वर्य संपन्न भगवान होकर भी साधारण बालकों की भांति मुग्ध होकर गाने लगते, अथवा कभी वे उनके हाथ की कठपुतली अर्थात उनके सर्वदा अधीन होकर नाचने गाने लगते, कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दशहरी आदि तोलने के बटखड़े अर्थात बाट लाने का आदेश देने पर मानो श्री कृष्ण उन्हें उठाने में असमर्थ हैं ऐसा भाव प्रदर्शन करते, कभी खड़ाव ले आते तो कभी गोपियों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोककर दावजी आदि से लड़ने लगते। आनंद रसमय कुंड में सराबोर करने का निर्देश ही श्रीमद् भागवत के स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन वाक्य खंड में हुआ है, अथवा या दूसरा अर्थ इस प्रकार है। घोष का अर्थ है कीर्ति अथवा महात्म्य का उत्कीर्तन, स्वस्य अर्थात अपना अथवा स्वानाम गोप गोप्यादिना स्वी गोप गोपी आदि का, घोष अर्थात कीर्ति या महात्म्य कीर्तन, यथा स्यात् तथा इति स्वघोषम, जो कि यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में व्यवहृत है, जो स्वघोष पूर्वक स्वयं ही आनंद कुंड में निमज्जन कर रहे हैं अर्थात परम सुख विशेष का अनुभव कर रहे हैं उनको नमस्कार है। और भी जो भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परायणों में यह प्रसिद्धि अर्थात घोषणा कर रहे हैं कि मैं भक्ति प्रायणों के द्वारा वशीभूत होता हूँ, ना कि ज्ञान प्रायणों के द्वारा, उनको नमस्कार है। इसके द्वारा दर्शयम स्तद्विदम लोके आत्मनो भृत्य वश्यताम। भागवत ये 10:11-9 पद का अर्थ प्रदर्शित हुआ है। इस भागवती पद में तद विदाम का अर्थ है तम भगवंतम विंदिति इति तेषाम तज्जत ज्ञान प्राणम। अतएव उक्त संपूर्ण पद्य का अर्थ इस प्रकार हुआ है, श्री कृष्ण उन ज्ञान पर भक्तों के प्रति अपनी भृत्य वश्यता प्रदर्शित करते हुए बालोचित क्रीड़ा द्वारा ब्रजवासियों का हर्ष उत्पन्न करते। अथवा तदीय शीतागेशु भक्तेर जितत्वम का दूसरा अर्थ इस प्रकार है, जो तदीय अर्थात भागवतों के प्रभाव के विषय में अभिज्ञ हैं, उनमें ही ना कि अन्य वैष्णव महात्म विशेष के विषय में अनभिज्ञ केवल ज्ञान प्रायणों में जो भक्त वश्यता का प्रकाश कर रहे हैं, उनको नमस्कार है। क्योंकि भक्ति और विशेषता भक्ति का महात्म्य परम गोपनीय होने के कारण वैसे केवल ज्ञानियों में इसका प्रकाशन अनुचित है। अतः उपर्युक्त भागवती 10:19-9 पद में तद विदाम का अर्थ भृत्य वश्यता विदाम अर्थात भृत्य वश्यता जानने वाले समझना चाहिए। अतः मैं सत्यव्रत मुनि प्रेम पूर्वक 100-100 बार उन ईश्वर की पुनः वंदना करता हूँ। इसके द्वारा सत्यव्रत मुनि ये दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विशेष प्रकार वंदन ही मेरा प्रार्थनी है, ना कि ऐश्वर्य ज्ञान आदि। इति श्री दामोदर अष्टक के 33 श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावनुवाद समाप्त। दिग्दर्शनी वृत्ति। श्री कृष्ण की लीलाएं अक्षय सरोवर हैं, जिनमें घोषपल्ली डूब जाती है। घोषपल्ली अर्थात वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण संबंधी लीला का घोष होता है। पशु पक्षी गाय गोप गोपी सभी स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण चरित्र का घोष या उच्च स्वर से गान करते हैं, वही ध्वनि मुखरित होती है। गाय का दोहन करो, बछड़ा खोल दो, दोहनी लाओ आदि आदि, ये सब कुछ गोपाल श्री कृष्ण के आनंद के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं, घर की देहली को पार करना सीख गए हैं। एक दिन बलदाव भैया के साथ घर से बाहर निकल गए, देखा घर के पास ही लाल लाल सुंदर पुष्प खिले हैं, किंतु बेर के सूखे कांटों के घेरे के अंदर हैं। जैसे तैसे उन कांटों को उठाकर अंदर चले तो गए और पुष्प भी तोड़ लिए, किंतु पुनः कांटों के गिर जाने से निकलने का मार्ग बंद हो गया, अब बाहर कैसे आए। बस जोर जोर से रोना प्रारंभ हो गया। रोने का शब्द सुनकर मैया घर से बाहर आई और कांटों को किसी प्रकार हटाकर दोनों को बाहर निकाला। कभी खाली तलवार या चाकू हाथ में ले लेते, कभी बड़े बड़े सींगों वाले सांडों के सींग पकड़कर उनसे झूल जाते, कभी मनिस्तंभ में अपनी प्रतिछवि देखकर आश्चर्यचकित होकर वार्तालाप करने की चेष्टा करते। एक दिन मैया ने कहा, कन्हैया एक बछड़े को ले आ, उसकी पूजा करनी है। कन्हैया बछड़े के पास पहुँचे और उसे पकड़कर लाने लगे, परंतु वे आ नहीं रहा था। बड़े परिश्रम से कन्हैया उसे ठेल ठेल कर ला रहे हैं। घर में आकर कन्हैया ने छीकों पर मटकुई में माखन लटका हुआ देखा, मुँह में पानी आ गया। बछड़े के ऊपर चढ़कर छीके पर रखी हुई मटकी से माखन निकालने लगे। बछड़ा मौका पाकर भाग गया और कन्हैया छीके से लटके रह गए। मैया मैया चिल्लाने लगे। तब मैया ने आकर नीचे उतारा और कन्हैया को डांटने लगी। प्रातःकाल में यशोदा मैया के घर में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियों का जमघट लग जाता था। कुछ गोपियां कहती, कन्हैया अधिक शक्तिशाली है। कुछ कहती, नहीं बलदाव अधिक शक्तिशाली है। इसका निर्णय कैसे हो, दोनों परस्पर मल युद्ध करें, जो जीतेगा उसे माखन का लोना मिलेगा। माखन का लोना देखते ही दोनों के मुख में पानी आ जाता और दोनों कुश्ती लड़ने लगते। जब कन्हैया जीतते तो उनके पक्ष की गोपियां ताली बजाती, जब वे हार जाते तो बलदाव के पक्ष की गोपियां ताली बजाती। कभी कभी कोई गोपी लड्डू का लोभ देती, कन्हैया यदि तुम नृत्य दिखाओ तो ये लड्डू दूंगी। कन्हैया कमर पर हाथ रखकर तात हई नाचते, बीच बीच में तान भी छेड़ते। श्री कृष्ण के सूत्रधार ब्रजांगनाएं हैं जो उन्हें कठपुतली की भांति नचा रही हैं। कभी मैया से मिलने गोपियां घर में आती और आदेश देती, कृष्ण बैठने के लिए पीढ़ी लाओ। कृष्ण पीढ़ी को उठाने का प्रयत्न करते परंतु उठा नहीं पाते। उसे देखकर गोपियां ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को गेंद की भांति अपने कनिष्ठ उंगली पर अनायास ही उठा लिया। वरा रूप में पृथ्वी को अपने दांतों पर रख लिया, वे ब्रज में एक पीढ़ी भी नहीं उठा पा रहे हैं। यही माधुर्यमयी नर्वत लीला है। सर्वनियंता है, सर्वनियामक है, किंतु ब्रजवासियों के नियंत्रण में है। सर्वशक्तिमान अघटन घटन पटियसी शक्ति से युक्त हैं, किंतु ब्रज में अबोध बालक हैं, अपनी मैया के लाल्य पाल्य हैं। आज्ञाकारी पुत्र की भांति बाबा की जूती सिर पर उठाकर लाते हैं, जिसे पहनकर बाबा बैठक में जाएंगे। इति त्रिक स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम्। श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला अखंड अनंत सीमा रहित रस में जलाधार है। श्री कृष्ण अपनी बाल लीला माधुरी द्वारा ब्रज की आभीर पल्ली या गोप पल्ली, गोप गोपी गाय बछड़ा सभी को अपनी लीला माधुरी रूप अथा सागर में डुबो देते हैं या स्वयं डूब जाते हैं। इस प्रकार लीला क्यों कर रहे हैं? तदुत्तर में कहते हैं, तदीये शीतार्गेषु। जो तत्वज्ञानी हैं वे ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर को सभी अवतारों के मूल अवतारी, भगवत्ता का सार सीमा, षड ऐश्वर्यपूर्ण अघटन घटन शक्ति से युक्त देखते हैं। नारद चतुसन आदि भक्तजन तत्वज्ञ हैं, इनको अपना ऐश्वर्य दिखला रहे हैं कि अघटन घटन शक्तिशाली होने पर भी मैं इन ब्रजवासियों के वशीभूत हूँ, अबोध बालक की भांति खेल रहा हूँ। इति त्रिक स्वलीला भी। एक दिन मथुरा की एक फल विक्रेणी ब्रज में आई। ब्रज में आने से पूर्व मथुरा में गोकुलस्थ श्री कृष्ण की सुमधुर लीलाओं को सुनकर उसकी बहुत उत्कंठा हुई कि श्री कृष्ण का दर्शन करूं। अतः श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा से वे ब्रज में आती। कभी श्री कृष्ण सोते हुए होते, कभी मैया की गोद में, कभी सखाओं से घिरे, कभी घर के भीतर खेलने में व्यस्त होते। अनेक चेष्टा की फिर भी दर्शन नहीं कर पाई। मथुरा के लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है, ब्रजवासियों को सहज में ही दर्शन हो जाते हैं। उसके हृदय में ऐसी उत्कंठा हुई कि आज मैं श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना मथुरा लौटूंगी ही नहीं। ठीक उसी प्रकार साधक की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। दिन रात श्रीमन महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी द्वारा जो भक्ति के अंग कहे गए हैं उनका आचरण करूँगा, संख्या पूर्वक प्रीति के साथ हरिनाम करूँगा, गुरु वैष्णव की सेवा करूँगा, प्रतिदिन श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करूँगा, गोपी गीत वेणु गीत भ्रमर गीत युगल गीत का प्रतिदिन पाठ करूँगा, कोई रसिक वैष्णव मिल जाए तो उनकी प्राण देकर सेवा करूँगा। जहाँ जहाँ श्री राधा कृष्ण की निभृत निकुंज लीला हुई हैं उन लीला स्थलों पर जाकर वैसी ही सकातर प्रार्थना एवं लालसामय स्तोत्र स्तुति का पाठ करूँगा। ऐसा करने से श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, अवश्य ही दर्शन देंगे। ऐसा संकल्प लेकर वे नंद गोकुल में आई और नंद भवन के समीप चक्कर लगाती हुई उच्च स्वर से फल लो, पके फल लो, आम लो, केले लो, अमरूद लो पुकारने लगी। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री कृष्ण में ऐसी तन्मय हो गई कि फल के स्थान पर गोपाल लो, गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो टेरने लगी। एक हाथ से फल की टोकरी पकड़ रखी थी, वह भी छूट गई, किंतु पूर्व अभ्यास से टोकरी गिरी नहीं। अंत में वह नंद भवन की देहली के समीप ही बैठ गई। श्री कृष्ण ने फल विक्रेनी की टेर सुनी, वे स्थिर नहीं रह सके। मैया की गोदी से उतरकर पास ही गेहूं की राशि से एक अंजलि गेहूं के दाने को उठाकर फल विक्रेनी के पास चले। छोटी सी अंजलि, उसमें भी कुछ दानों के अतिरिक्त रास्ते में सभी बिखर गए। कुछ ही दाने अंजलि की संधि स्थान में अटके रहे। फल विक्रेनी के समीप पहुंचे और उसकी टोकरी में बचे खुचे गेहूं के दानों को डालकर बोले, अरे फल दो। फल विक्रेनी कुछ क्षण तक बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर ठगी सी रह गई। यहाँ सिद्धांत यह है कि ऐसी उत्कंठा के बिना श्री कृष्ण दर्शन नहीं देते। कैसी उत्कंठा? फल विक्रेनी जैसी उत्कंठा और तन्मयता। दर्शन और सेवा के बिना और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, कोई अनर्थ नहीं। ऐसे साधकों को ही श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। अब फल विक्रेनी को चेत हुआ और बोली, लाला यदि मेरी गोद में बैठकर मुझे एक बार माँ कहो तो ही फल दूंगी। श्री कृष्ण ने चारों ओर देखकर कि कोई देख ना ले, झट उसकी गोद में बैठ गए। माँ कहा और फिर झट खड़े होकर फल मांगने लगे। फल विक्रेनी के मन की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। वे सारे फलों को श्री कृष्ण को देना चाहती थी, परंतु उनकी अंजलि में जितने फल समा सके भर दिए। कन्हैया ने फल लेकर घर के आंगन में बैठी माँ यशोदा के आंचल में रख दिए। मैया ने पूछा, लाला फल कहाँ मिले? श्री कृष्ण ने इशारे से बता दिया, उधर से। मैया बड़ी आनंदित हुई। उन्होंने वहाँ उपस्थित सारी गोपियों में फल बांट दिए, किंतु आश्चर्य का विषय ये कि वे फल कम नहीं हुए। फल भी बड़े मधुर और सुस्वादु थे। श्री कृष्ण के चले जाने पर फल विक्रेनी को कुछ भी होश नहीं रहा। उसका चित श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। वे वहीं बैठी की बैठी रह गई। कुछ समय के बाद किसी गोपी के झकझोरने के बाद उसे चेतना आई। वह फलों की टोकरी सिर पर उठाकर मथुरा की ओर चल पड़ी। मार्ग में यमुना के तट पर उसे टोकरी भारी प्रतीत हुई। वह उसे उतारकर देखने लगी। ओहो, वह टोकरी विविध प्रकार के अमूल्य रत्नों से भरी थी। उसने रत्न समेत टोकरी को यमुना की धारा में प्रवाहित कर दिया और फफक फफक कर रोने लगी कि श्री कृष्ण ने मुझे वंचित कर दिया, मैं ठगी गई। ये कहकर प्रेम में विलाप करने लगी। वह फिर घर कभी नहीं लौटी। जिनका मन श्री कृष्ण चुरा लेते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातनुराग द्रुत चित्त उच्छे हसत यथो रोदती रोती गायत उन्माद व नृत्यति लोकबाज्ये। श्रीमद् भागवत 11:2:40। अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित द्रवीभूत हो जाता है। जब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। बाल घाती रुधिर पीने वाली भयंकर पूतना राक्षसी जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसे केवल वंचनामय मातृ वेश धारण करने के कारण गोकुल में धातृ उचित गति उन्होंने प्रदान की थी। सुदामा विप्र को मुट्ठी भर चावल के कणों के बदले न जाने क्या क्या दिया था। वे सर्वस्व फलों को देने वाले इस फल विक्रेनी को क्या देंगे, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी ये सोच नहीं पाते। तभी तो वे कहते हैं, एष घोष निवासनम उत भवान किम देव रातियति नस चेतो विश्व फलत फलम त्वन अपरम कुत्रापि अयम मुह्यति षद वेषद एव पूतनापि स्वकुल त्वम एव देवापिता यद धर्म अर्थ सुरित प्रियात्म तन्ने प्रणयस्य त्वत्कृते श्रीमद् भागवतम 10:14-35। अर्थात हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप देकर भी उरण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में ही समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? इस प्रकार श्री कृष्ण प्रतिदिन ऐसी सुंदर सुंदर लीला करके सारी घोषपल्ली को आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों को अपनी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा आनंद सागर में सराबोर कर रहे हैं। जिनको श्री कृष्ण के प्रति भगवत्ता का ज्ञान है कि वे सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनादि सबके आदि अघटन घटन शक्तियुक्त अस्मा और्ध स्वयं भगवान हैं, उनको दिखा रहे हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होता हूँ। किस भक्ति से वशीभूत होता हूँ इसको बतला रहे हैं। चतुसन में भी भक्ति है। ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज नारद जी उद्धव जी यादवगण आदि सभी में भक्ति है, किंतु वैसी भक्ति से मैं कभी भी वशीभूत नहीं हो सकता हूँ। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे ना ही मोर प्रीत चैतन्य चेतामित आदि लीला 3:16। वे मेरे स्तव स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, किंतु ब्रज के सुबल श्रीदाम मधुमंगल मैया बाबा सर्वोपरि यदि गोपियों की भांति भक्ति हो तो वे वशीभूत होंगे। इन गोपियों में भी श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी हैं। राधा जी की किंक्रियों की भांति भक्ति हो तो श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से वशीभूत हो सकते हैं। यहाँ पर यही दिखला रहे हैं। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरा भ्रुवम सभी भ्रमम ससम भ्रमम दृगंत बान पातने निरंतरम वशीकृता प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यसिह माम कृपा कटाक्ष भाजनम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम 3। प्रेम कीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी भ्रुकुटी करके आश्चर्य प्रकट करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर वशीभूत करने वाली हे सर्वेश्वरी राधिके, मुझे कब अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? श्री सीता जी का स्वकीय मधुर भाव भी श्री राम को वशीभूत नहीं कर सका। श्री राम ने उनको 2 बार परित्याग कर जंगल में भेजा। क्या श्री कृष्ण स्वामिनी जी को घर से निकाल सकते हैं? श्री स्वामिनी तो उनके घर में ही नहीं रहती। अरे निकालने की तो बात दूर रहे, उनसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि वे उनसे डरते हैं। हर समय राधा जी के प्रेम में सने रहने के कारण भयभीत रहते हैं, कहीं मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। उनकी तो बात ही अलग रहे, गोपियाँ उन्हें नाचना एवं सभी कलाएं सिखाती हैं। प्रिया को नचवत सिखवती प्यारी मान गुमान लकुटी लिए ठारी डरबत कुंज बिहारी। जब श्री राधा जी को अन्यास हेतुक अहेतुक मान हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्मर गर खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम श्री गीत गोविंद 10:8। श्री राधा जी की तो बात ही क्या, श्री राधा जी की सहचरिया श्री रूप मंजरी तथा श्री रति मंजरी जब श्री राधा जी के आदेश से श्री श्याम सुंदर को उनके कुंज में प्रवेश करने से निषेध करती हैं तो वे उनके पैया पकड़कर कुंज में प्रवेश की आज्ञा चाहते हैं। उनके चरणों में गिरकर चाटुकारी लल्लू चप्पू करते हुए प्रार्थना करते हैं, बताओ तो सही कैसा है श्री राधा जी का दास्य पद। इसलिए हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, पदाब्जो यो स्तव विना वरदास्यमेव नान्यद यत कदापि समय किल देवी याचे सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। शिविलाप कुसुमांजलि 16। अर्थात हे देवी, आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, किंतु मैं आपके श्री चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। आपके सख्य पद के लिए मेरा कोटि कोटि बार नमस्कार है। मुझे तो केवल मात्र आपके श्री चरण कमलों की सेवा में रस है, आनंद है। श्री प्रबोधानंद जी तो श्री कृष्ण की लीला में तुंग विद्या हैं, वे भी दासी पद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यत किं करिषु बहुशः खलु काको वाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्यः कदा रसनिधे वृषभानुजाय तत्केलि कुंज भवांगन मर्जनी स्याम। श्री राधा रसुधा निधि 8। गोपियों के उठाने पर उठते हैं, बिठाने पर बैठते हैं, ये किसी भक्ति द्वारा संभव पर नहीं। मैया कहती है, आज कन्हैया तुम वन में गैया चराने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा आज जन्म दिवस है। किंतु ये मैया का भी कहना ना मानकर उत्साहपूर्वक गोचारण को जाते हैं। वन में ऐसी क्या वस्तु है जो वन में जा रहे हैं? वन में गोपियों के साथ श्री राधा के साथ स्वच्छंद विहार है। राधा कुंड, सूर्य कुंड, कुसुम सरोवर में मिलन होता है। वात्सल्य रस से भी उन्नत ये गोपियों का माधुर रस है, जो वात्सल्य रस को भी अपने में क्रोड़ीभूत कर लेता है। सखाओं के साथ कीड़ा, गायों को चराना गौन है, प्रियतमा गोपियों के साथ विहार करना ही मुख्य है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सखियों के बिना कृष्ण लीला का विस्तार नहीं है। राधा कृष्णेर लीला ही अति गुणतर, दास्य वात्सल्य आदि भावे ना है गोचर। सभी एक सखी गने इहा अधिकार, सखी हैते है ए लीला विस्तार। सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं है, सखी लीला विस्तारिया सखी अस्वादय। सखी बिना ए लीला अन्यर नहीं गति, सखी भावे ये तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से उपाय, से साध्य पाईते आर नहीं को पाए। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 8:200-204 तक। अर्थात श्री राधा कृष्ण की कुंज लीला अत्यंत गूढ़ है, जो दास्य सख्य और वात्सल्य भावों के भी अगोचर है। केवल व्रजांगनों का ही इस गूढ़ लीला में अधिकार है, उनसे ही इस लीला का विस्तार होता है और वे ही इसका आस्वादन करती हैं। इसमें उनको छोड़कर किसी भी दूसरे का प्रवेश नहीं है। जो सौभाग्यवश गोपियों के भावों का अनुगमन करते हैं, केवल वे साधक ही इस परम उच्च साध्य को पा सकते हैं। अहो कैसी हैं ये ब्रज रमनिया, जो चुल्लू भर छाछ के लिए श्री हरि कृष्ण को नचाती हैं। छछिया भर छाछ पर हरि को नचावे रसखान। एक समय देवादिदेव श्री महादेव शंकर जी ने देखा कि हमारे परम आराध्य देव ब्रज में प्रकट हुए हैं। वे उनके दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे और नंद भवन के द्वार पर ऊंचे स्वर से अलक निरंजन कहकर डमरू बजाने लगे। मैया यशोदा यह सुनकर द्वार पर एक अद्भुत योगी को देखकर डर गई। बाघ अंबर पहने हुए, गले में हड्डियों की माला, हाथ पैर और गले में सर्पों के आभूषण, हाथ में त्रिशूल, भयंकर जटाएं, पास में नंदीश्वर सांड, सारे शरीर में भस्म रमाए हुए हैं। यशोदा जी तो एकदम डर गई, फिर भी बोली, भिक्षा चाहता है, ठहरो, ला रही हूँ। तो शंकर जी ने उत्तर दिया, अरे मैया, मैं तो बड़ी दूर कैलाश से चलकर आ रहा हूँ, तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। इतने में ही मैया बोली, जो तुझे खाने की पीने की आवश्यकता हो तो ले लो और चला जा। यहाँ डमरू जोर जोर से मत बजा, मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। शंकर जी बोले, अरे भोरी भारी मैया, मुझे तेरा आटा दाल पटांबर झोरी खाने पीने रहने सोने की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। मैं तो तेरे लाला का एक बार दर्शन करने आया हूँ, बस मुझे यही भिक्षा चाहिए। मैया बोली, ए अरे मोए बोड़ी कु, तू तेरे स्वरूप देखकर डग लग रहे है। मेरे लाला अति सुकुमार है, वह तेरे रूप देखकर डर जाएगो, मैं तोय नहीं दिखाऊंगी। यह कहकर यशोदा मैया घर के भीतर चली गई। देवाधिदेव शंकर जी भी कम मानने वाले थे, उन्होंने द्वार के समीप ही धुनी रमा दी और मन ही मन बोले, जब तेरो लाला बड़े होगो बार खेलने आवगो तब तेरे लाला का दर्शन करूंगो, अब तो बिना दर्शन किए लौटूंगो नहीं। जिस स्थान पर वे बैठे थे आज भी वह स्थान योगिया कुंड के नाम से विख्यात है। यशोदा मैया ने जब घर के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि लाला बड़े जोर से रो रहा है, वे किसी प्रकार चुप नहीं हो रहा है। मैया ने अपनी सहेलियों से परामर्श किया। एक प्रौढ़ा गोपी बोली कि वह कोई साधारण योगी नहीं, कैलाश से आया है, वह डमरू बजाता है। उसे सुनकर लाला डरकर और भी क्रंदन कर रहा है, तुम्हें अपने लाला को उसे दिखलाने में ही भला है। यशोदा मैया और कोई भी उपाय ना देखकर एक काले सूप में लाला को सुलाकर काले कपड़े से सर्वांग को ढककर नेत्रों में लंबा काजर लगाकर माथे पर काला टीका कर उसे बाहर लाई और एक झलक दर्शन कराकर भवन के भीतर प्रवेश करने लगी। लाला अब चुप हो गया, यह देखकर मैया आश्चर्यचकित हो गई। योगी राज ने कहा, मैया मैं पास ही धुनी रमाऊंगा, यदि तुम्हारे लाला को नजर लगे तो मुझको बुलवा लेना, मैं नून और राई के साथ मंत्र से झाड़ दूंगा, तेरा लाला स्वस्थ हो जाएगा। अतएव जब जब लाला रोता था मैया योगी उस स्थान से योगी को बुलवा लेती थी। योगी चलो नंद भवन में, यशोमती मैया तुम्हें बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है ते पे राय नून करवावे, रह रहे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास सदा तू कीजो, जब जब वाको लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। इस प्रकार योगी का जन्म सफल हो गया। एक बार यशोदा मैया रात को कन्हैया को लेकर थप थपाती हुई एक कहानी सुनाकर सुला रही थी। वह कहानी इस प्रकार है, एक राजा था, श्री कृष्ण हूँ कारी भरते जाते थे, उसका नाम दशरथ था, उसके चार पुत्र थे। कुछ बड़े होने पर विश्वामित्र उन्हें यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हूँ। यज्ञ रक्षा के बाद वे विश्वामित्र के साथ मिथिला में पहुँचे। वहाँ महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो धनुष पर प्रत्यंचना चढ़ाकर धनुष तोड़ेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हूँ। दूर दूर के देश के राजा आए, सभी हार गए। अंत में राम ने धनुष को तोड़ा और सीता का विवाह राम से हुआ। उसके बीच बीच में कृष्ण हुंकार भरते जा रहे हैं। थोड़ा सा विलंब होने पर भी उत्कंठित होकर पूछते हैं, मैया फिर क्या हुआ? फिर मैया कहने लगी, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राम वन में गए। राक्षस मारी छल से राम को वन में ले गया, उधर रावण सीता का हरण कर ले गया। इतना सुनते ही श्री कृष्ण राम के आवेश में पलंग से कूदकर बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। लंफ देकर उठे। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भाव में विभावित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। एक दिन मैया लाला को अपनी मीठी मीठी बातों में लगाकर दही मंथन कर रही थी। इतने में ही मैया किसी कार्यवश अन्यत्र चली गई। लाला की नज़र गगरी में पड़ी, गगरी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। फिर क्या था, मैया के लौटने पर जिद करने लगे, मैया मैं तो ये खिलौना लूँगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेवो। मैया ने गगरी से निकाल कर एक माखन का लोना दे दिया। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक पुनः गगरी में देखने लगे। उन्हें पुनः वहाँ चंद्र का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा, पुनः उसे पाने के लिए मचलने लगे। मैया ने कहा, इधर देखो यह चंद्र है। श्री कृष्ण बोले, मैया मैं चंद्र लूँगा। मैया, इसमें विष लगा है। कृष्ण, इसमें विष कैसे लगा? मैया, एक बार देवता और दानव समुद्र का मंथन कर रहे थे, उससे विष निकला जो चंद्र में लग गया। देखो चंद्रमा में जो काला काला धब्बा देख रहे हो, वह वही विष ही तो है। भला इसके साथ कौन खेलेगा? इसे सुनकर श्री कृष्ण डर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की अनंत मधुर से मधुर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं के समुद्र में वे स्वयं निमज्जित होते हैं और ब्रजवासी को भी निमज्जित करते हैं। इति श्री दामोदर अष्टक के तृतीय श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त।